प्रदान करना असंभव है। कोई ये कहे कि हम लोग भगवान कृष्ण को पूरी तरह से समझा सकते हैं, उनकी ग्लोरीज बता सकते हैं, तो वो असंभव है ना? जिस प्रकार से अनंत शेष हजारों मुखों से अनंत काल से भगवान की महिमा गा रहे हैं, लेकिन उसका शेष नहीं प्राप्त कर पा रहे, इसीलिए उनका नाम है अनंत शेष। लीला खत्म नहीं हो रही भगवान की, बार बार गुणगान किए जा रहे हैं लगातार। इसी तरह से जो भगवान के भक्त हैं उनकी जो महिमा है उसका भी पूरी तरह से गुणगान कर पाना असंभव है। वो एक क्षण में इतने कार्य कर सकते हैं, उनको पूरा जन्म भी अगर उसके बारे में बोले तो पॉसिबल नहीं है कि उसको एक्सप्लेन किया जा सके। तो हम एक बूंद को छू सकते हैं, हम ग्लोरीफाई हमें करना चाहिए हमारे आचार्यों को, गोस्वामियों को, ताकि उससे हमारी प्यास बढ़े उनके बारे में जानने के लिए, हमारी लालसा बढ़े हम उनके बारे में और जानने का प्रयास करें, जिससे हमारी श्रद्धा हमारे आचार्यों में और आचार्यों के माध्यम से भगवान कृष्ण बड़े होंगे। तो सनातन गोस्वामी कौन है? सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु ने असंख्य लोगों का उद्धार किया अपनी प्रकट लीला के दौरान। जहां भी गए चैतन्य महाप्रभु के दर्शन पवित्र करो, चैतन्य महाप्रभु को देखकर ही लोग भक्त बन जाते हैं, और जो लोग चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करके वापस अपने गांव जाते थे उनको देख के बाकी के लोग भक्त बन जाते थे। चैतन्य महाप्रभु की इतनी महिमा, इतना प्रभाव है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के असंख्य भक्त हैं, लेकिन उसमें से 6 प्रमुख शिष्य हैं जिनको हम षट गोस्वामी कहते हैं। तो सनातन गोस्वामी जो है उन षट गोस्वामी में से एक, वो सबसे बड़े थे उम्र में, 3 भाई थे सनातन गोस्वामी, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और तीसरे भाई का क्या नाम है? अनुपम। सो इनका, ये तीनों भाइयों का जो जन्म है सारस्वत परिवार में भारद्वाज गोत्र में हुआ, कर्नाटक के परिवार से ये संबंधित थे। बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही पवित्र। तो उस समय बंगाल में तो इनकी फैमिली कुछ कारण हुए तो इनके जो पूर्वज हैं वो कर्नाटक से इधर बंगाल शिफ्ट हो गए। इनके जो पूर्वज हैं वहाँ पर बंगाल में शिफ्ट हुए, उस समय वहाँ पर नवाब हुसैन शाह का राज चल रहा था, तो वो हिंदुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से हिंदुओं को हम काबू में कर सकें, लेकिन हिंदू उसके काबू में नहीं आ रहे थे। तो किसी उसके मंत्री ने सलाह दी कि देखो दो ये भाई हैं, 2-3 भाई, आप अगर इनको अपने मंत्रिमंडल में मिला लेंगे तो हिंदू काबू में आ जाएंगे। तो नवाब हुसैन ने तीनों भाइयों को बुला लिया, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम को, इनको बुला लिया। इनको बोला कि आप हमारे, मुझे हेल्प करो और सारा काम काज संभालो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम, हमारे पास टाइम नहीं है, हम, हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम कोई सरकारी राज काज हम संभालें। तो धमकी दी नवाब हुसैन ने, और उन्होंने कहा अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो उन्होंने बोला मैं दे दो सजा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नवाब हुसैन ने कहा तुम्हें सजा नहीं दूंगा, मैं जितने हिंदू हैं उन पर अत्याचार शुरू कर दूंगा। तो लोगों को अत्याचार से बचाने के लिए तीनों भाइयों ने उनकी नवाब हुसैन की जो है सेवा स्वीकार कर दी, उसके लिए सेवा करना शुरू कर दिया और ग्लानि से भरे रहे। उनकी जो सेवा कर रहे थे नवाब हुसैन की, वो तो ग्लानि से भरे ही थे, अपने आप को मलेच्छ समझ रहे थे। उनके जो माता पिता हैं वो भी पूरा जीवन जो है इस दुख से पीड़ित रहे कि हमारे बेटे जो हैं वो एक मलेच्छ की सेवा कर रहे हैं। उनके जो पिता हैं वो तो बल्कि पूरा जीवन यज्ञ करते रहे उनके इस पाप का निवारण करने के लिए कि मलेच्छों की सेवा कर रहे हैं। इतने महान भक्त थे उनके जो माता भी और पिता दोनों बहुत उच्च कोटि के वैष्णव। तो नवाब हुसैन ने इनको रामाकेली में रहने की जगह दी। आप जाएंगे मालदा डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट बंगाल में मालदा डिस्ट्रिक्ट में रामाकेली जगह आती है, तो वहाँ पर इन्होंने इनके लिए बहुत बड़े बड़े महल बनाए। इतना इन पे भरोसा करता था तीनों भाइयों पे, एक वित्त मंत्री, एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री, इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट थे। और उनके परिवार वाले खुश नहीं थे कि कितनी बड़ी पोजिशन है, दुखी थे। रामाकेली में रह रहे थे और उन्होंने रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने रामाकेली में इन्होंने पूरा वृंदावन कंस्ट्रक्ट किया। राधा गुण श्याम गुण गोवर्धन, वृंदावन में पूरा इन्होंने सेटअप बना दिया था। आप आज भी जाएंगे वहां पे आपको अवशेष मिल जाएंगे। रामाकेली आप जाएंगे तो आपको रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का जो निवास स्थान है आपको आज भी मिलेगा वहाँ पर। सनातन गोस्वामी जब बहुत यंग थे तो उनको सपने में एक ब्राह्मण आए और उनको श्रीमद् भागवतम उनको प्रदान किया। तो जब उनका सपना टूटा तो सुबह हुई तो सुबह वही ब्राह्मण उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में आए और उनको श्रीमद् भागवतम दिए। वो दिन से लेके वो डेली श्रीमद् भागवतम का पाठ करते और उन्होंने रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने एक बहुत बड़ा ऐसे हॉल बनाया था और वहाँ पर बैठकर वो रोज ब्राह्मणों के साथ चर्चा करते थे भागवतम के ऊपर। और ऐसा बताया जाता है कि जिस प्रकार इंद्र शोभायमान होता है अपने राजभवन में, उसी प्रकार रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी शोभा पाते थे इस सभा में। तो नवाब हुसैन ने इनके नाम चेंज कर दिए, रूपा गोस्वामी का नाम उन्होंने दिया नवाब हुसैन ने दबीर खास, और सनातन गोस्वामी का नाम दिया साकर मलिक। दोनों ने जो रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है इन्होंने सुना चैतन्य महाप्रभु के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव उनकी लीला के बारे में, तो इनको विश्वास हो गया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इनसे मिलने के, चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार पुरी से गए वृंदावन के लिए, तो अगर हम जगन्नाथपुरी से वृंदावन का रास्ता देखें तो रामाकेली बीच में नहीं आता, हटके है वो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु घूमते घूमते वृंदावन जाते जाते रामाकेली पहुँचे, और रामाकेली पहुँचे तो वहाँ पर रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए पहली बार उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से दर्शन किए चैतन्य महाप्रभु के। उससे पहले जब तक चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे रामाकेली, रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बहुत लालायित थे चैतन्य महाप्रभु से के दर्शन करने के लिए, उनको सरेंडर करने के लिए। तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि मतलब हमें क्या करना चाहिए, तो उनकी मदर ने बोला कि आप उनको एक चिट्ठी लिख के भेजो, आप अपने जो दिल का, जो आप दिल में आपकी इच्छा है उसको आप चिट्ठी में लिख के उनको भेज दो। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी चैतन्य महाप्रभु को, कोई जवाब नहीं आया। दो चिट्ठियाँ, तीन चिट्ठियाँ, पाँच, दस, बीस चिट्ठियाँ, काफ़ी सारी चिट्ठियाँ लिखी उन्होंने। तो लास्ट में चैतन्य महाप्रभु ने एक चिट्ठी उनको भेजी और उस चिट्ठी में एक पैराग्राफ लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था अगर अगर कोई स्त्री व्यभिचारिणी है, अगर कोई स्त्री विवाहिता है लेकिन उसका कोई प्रेमी भी है, तो ये बात जग जाहिर नहीं हो, इसलिए वो स्त्री क्या करेगी, अपने पति की बहुत अच्छे से सेवा करेगी, घर का काम काज बहुत अच्छे से करेगी, लेकिन मन में अपने प्रेमी के बारे में लगातार सोचती है। बस इतना लिखा तो रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु अभी नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ से छोड़ के वहाँ पर आए, चैतन्य महाप्रभु का कुछ उद्देश्य होगा, चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं हम यहीं पर रह के अभी सेवा करें और उपयुक्त समय आने पर चैतन्य महाप्रभु का जैसे आदेश होगा वैसे करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु रामा के लिए पहुँचे, रामा के लिए पहुँचे और सनातन गोस्वामी और रूपा गोस्वामी उनसे आधी रात को मिलने गए चैतन्य महाप्रभु, वो छुप कर मिलने गए ताकि नवाब हुसैन को शर्म हो। तो मिलने गए तो ऐसे नहीं धड़धड़ाते हुए पहुंच गए उनके सामने कि हम आ गए, वो गए अपने गले में पट्टा बांध के और दांतों में तिनका दबा कर और दूर खड़े हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कौन खड़ा है वहां पर, तो उन्होंने दूर से प्रणाम किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा पास आओ, तो सनातन गोस्वामी और रूपा गोस्वामी दोनों चैतन्य महाप्रभु के पास हैं और चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला क्या चाहते हो तुम, तो दोनों भाइयों ने बोला कि आप प्लीज हमें बताएं। और ये वाक्य महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये प्रकांड विद्वान बोल रहे हैं ये वाक्य, ये वाक्य कोई अनपढ़ बेवकूफ व्यक्ति नहीं बोल रहा, ये वाक्य रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं जिनको सभी शास्त्रों का ज्ञान था, जो संस्कृत अरबी इत्यादि कई भाषाओं में पूर्णतः दक्ष थे, सभी शास्त्र पढ़े हुए थे, उनका मर्म समझते थे। तो वो जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा क्या चाहते हो तुम, तो दोनों भाइयों ने कहा कि आप प्लीज हमें बताइए कि हम कौन हैं, हम इस संसार में क्यों दुख झेलते हैं और इन दुखों का खात्मा करने का क्या उपाय है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम दोनों भाई इतनी दीनता मत दिखाओ, तुम्हारी दीनता देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है, तुम दोनों वास्तव में मेरे नित्य सेवक हो, तुम रूपा गोस्वामी हो, तुम सनातन हो, सो तुम्हारे द्वारा मैं कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति करूंगा, तुम दोनों के द्वारा मैं बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने बोला कि हम तुरंत आपके साथ आपकी सेवा में लगना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है आप आ जाओ। सो रूपा गोस्वामी और अनुपम तुरंत उन्होंने छोड़ दिया राजपाट और चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए चले गए, लेकिन सनातन गोस्वामी एकदम से नहीं जा पाए किसी कारण से। लेकिन सनातन गोस्वामी का मन उचाट हो गया था, राजपाट में उनका मन नहीं लगना था, तो उन्होंने राजमहल जाना छोड़ दिया, दरबार में जाना छोड़ दिया। नवाब हुसैन को चिंता हुई क्या हुआ, उन्होंने संदेशा भेजा कि भाई आने दे क्या चक्कर है, तो सनातन गोस्वामी ने बोला मेरी तबीयत खराब है, जबकि घर में बैठ के वो ब्राह्मणों के साथ में भागवतम कथा कर रहे थे। तो कुछ दिन और वेट किया नवाब हुसैन ने और उसने फिर क्या किया, अपना वैद भेज दिया कि जाके चेक कर के आओ क्या प्रॉब्लम है, इतने दिन होकर बीमार पड़े हो, जाके देखो कोई दवा वगैरह अच्छी सी दवा दो उनको। जब वैद गया उसने देखा भले चल गए सनातन गोस्वामी, तो जब वापस आया वैद तो नवाब हुसैन ने पूछा क्या हुआ, बोला वो तो ठीक ठाक है। तो नवाब हुसैन खुद चला गया, उन्होंने बोला तुम वहां क्यों नहीं, मुझे कई जगह जाना है, मुझे उड़ीसा जाना है, वहां पर मुझे हमला करना है, उड़ीसा राज्य को जीतना है, ये करना है वो करना है, तुम आ नहीं रहे मैं जा नहीं पा रहा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा अब मैं आपके जो आप ये अत्याचार को कार्य कर रहे हो इसमें मैं आपको सहयोग नहीं कर सकता, प्लीज आप मुझे माफ कीजिए। तो नवाब हुसैन को गुस्सा आ गया और बंदी बना दिया सनातन गोस्वामी को, और बंदी बना के खुद उड़ीसा में चढ़ाई करने चला गया। रूपा गोस्वामी जाने से पहले अपनी सारी धन दौलत उन्होंने बांट दी थी, 10,000 मोहरे उन्होंने रखी थी आपातकाल के लिए। तो उन्होंने संदेशा भेजा सनातन गोस्वामी को कि मैंने वहां पर फलां व्यक्ति के पास 10,000 मोहरे रखवाई हैं, तुम उसका प्रयोग करो, कूटनीति का प्रयोग करो और वहां से छूट के निकलो वहां से। तो सनातन गोस्वामी जेलर के पास गए और जेलर को बोला आप तो बहुत महान व्यक्ति, आप कितने साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति, कितना सौम्य है आपकी मुद्रा, कितने धर्म कर्म वाले हो, धर्म कर्म से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं था। सनातन गोस्वामी ने कहा देखो मैं मक्का मदीना की यात्रा पे जाना चाहता हूँ, हज करना चाहता हूँ, और तुम्हें तो पता ही है हज करने वाले और हज करवाने वाले को दोनों को बराबर का पुण्य या सवाब मिलता है, तो तुम मेरी हेल्प करो और इससे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा, साथ में मैं तुम्हें 5,000 सोने के सिक्के भी दूंगा। तो जो जेलर है उसने कहा नहीं नहीं, और नवाब हुसैन आएगा उसको क्या जवाब दूंगा, कहाँ गया, कैसे क्या हो गया, वो तो मेरे को लटका देगा, 5,000 मुद्राओं का क्या करूंगा। तो रूपा गोस्वामी तो सनातन गोस्वामी ने बोला देखो तुम अगर नवाब हुसैन पूछे उनको बोला है सुबह शौच के लिए गया था गंगा के किनारे, गंगा में छलांग लगा दी, बेड़ियां बंधी हुई थी, हाँ बेड़ियां बंधी हुई थी, पत्थर बंधे हुए थे, तो गंगा जी में डूब गया मर गया, तो ये बोल देना, और तुम्हें ये झूठ बोलने में जो तकलीफ होगी उसके लिए मैं तुम्हें 2,000 स्वर्ण मुद्राएं और दे देता। तो उन्होंने 7,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और वहां से निकल गए और वहां से वो वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन के लिए प्रस्थान किया तो उनके साथ एक सेवक था साथ, उसका नाम था ईशान। जब चले तो रास्ते में बिहार में एक जगह आती है पात्रा, पहाड़ी इलाका है, वहां पे चोर डाकू गुंडे बहुत रहते थे उधर। तो वो जाके एक धर्मशाला में रुके सनातन गोस्वामी और ईशान, वहां पर रुके तो जो वो धर्मशाला का जो मालिक था उसने बहुत ज्यादा आवभगत की सनातन गोस्वामी की। तो सनातन गोस्वामी को शक हो गया उस पर कि कुछ गड़बड़ है, इतनी सत्कार क्यों कर रहे हैं। तो जो वो धर्मशाला का मालिक था उसके पास एक ज्योतिषी था, वो पता लगा लेता था ज्योतिष के माध्यम से कि ये जो यात्री है इसके पास कितना धन है। तो सनातन गोस्वामी ने ईशान से पूछा तुम्हारे पास वो धन है क्या, उसने कहा हाँ मेरे पास 7 स्वर्ण मुद्राएं। तो उसने कहा लाओ फटाफट दो मुझे, वो 7 स्वर्ण मुद्राएं ली और वो गए धर्मशाला के मालिक के पास, उसको बोला कि देखो मेरे पास कुछ धन है, वो धन मेरे को कल को मुसीबत में डाल सकता है, मैं चाहता हूँ ये धन आप ले लो। तो उसने कहा जो धर्मशाला का मालिक था उसने कहा कि देखो मुझे पता है तुम्हारे पास 8 मुद्राएं हैं, अगर तुम ये मुझे नहीं देते तो मैं रात को तुम दोनों का काम तमाम कर देता और मुद्राएं दे देता, लेकिन क्योंकि तुमने खुद सामने से आके मुद्राएं दी हैं इसलिए अब मुझे तुम्हारी मुद्राएं नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो और मैं तुम्हें सुरक्षित आगे तक पहुंचा दूंगा, तुम घबराओ मत। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि ये मुद्राएं के लिए तुम मुझे नहीं मारोगे, कोई और मार देगा, तो अच्छा है कि तुम रख लो। तो मुद्राएं उसको दे दी, मुद्राएं देके अगले दिन सनातन गोस्वामी और ईशान आगे निकल पड़े। तो सनातन गोस्वामी ने रस्ते में ईशान से पूछा, अरे भाई कुछ और धन है क्या तुम्हारे पास? उसने कहा हाँ जी मेरे पास एक मुद्रा और रखी। सनातन गोस्वामी ने कहा यार तुम मौत की घंटी गले में बांध के चल रहे हो, ये मौत की घंटी डेथ नेल अपने गले में बांध के चलने की आवश्यकता है, तुमने मेरी बहुत मदद कर दी, अब तुम यहाँ से इस एक मुद्रा के सहारे वापस पहुंच जाओ। और सनातन गोस्वामी वहां से अकेले चल पड़े। रस्ते में एक जगह रुके वो, और वहां पे उनको अपना बहनोई मिल गया उनको सनातन गोस्वामी को, उसका नाम था श्रीकांत, है ना। तो श्रीकांत आया था वहां पर नवाब हुसैन के लिए घोड़े खरीदने के लिए, बहुत धन था उसके पास, बहुत ऐश्वर्य में रह रहा था। तो उसने देखा, उसने कहा ये क्या हालत बना लिया तुमने, चलो मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाता हूँ, वापस अच्छी तरह से रहना शुरू कर दो, नवाब हुसैन को मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा छोड़ दो कुछ दिन। सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं मैं नहीं जाना चाहता, बड़ी मुश्किल से तो निकल गया है। तो श्रीकांत ने कहा चलो कुछ दिन मेरे पास रुक जाओ। उन्होंने कहा भैया एक क्षण तुम्हारे साथ रुक सकता है, विषयी का संग करूंगा मेरी मति भ्रष्ट हो जाएगी। तो बहुत जोर दे के श्रीकांत ने अपना बहुत ही बहुमूल्य कीमती कंबल था उनको दे दिया, चलो ये तो रख लो कुछ बचाव होगा सर्दी से। सनातन गोस्वामी ने वो लिया, आगे बढ़े, उनको बनारस पहुंचे तो पता चला चैतन्य महाप्रभु वहीं पर रुके हुए थे। तो चंद्रशेखर आचार्य के घर में, घर के बाहर पहुंच गए, अंदर चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, वो बाहर पहुंच गए और बाहर रुके, दरवाजा नहीं खटखटाया कि मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलना है। चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी है, सबके हृदय में बैठे हैं, सर्वस्य चाहा हृदय सर्वोत्कृष्ट। चैतन्य महाप्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य को बोला कि बाहर बहुत ही महान भक्त आए हैं, जाकर उनको बुला लो। चंद्रशेखर आचार्य बाहर गए, दाएं देखा बाएं देखा, ऊपर नीचे हर जगह देखा, कोई भक्त उनको दिखाई नहीं दिया, वापिस अंदर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या हुआ, बुला के नहीं लाए? उन्होंने बोला बाहर तो कोई भक्त नहीं बैठा हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या कोई नहीं बैठा? उसने बोला नहीं, एक बहुत मैला कुचैला दरवेश बैठा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा वही महान भक्त है, उनको अंदर ले गया। और जब सनातन गोस्वामी अंदर आए तो दूर से डरते डरते चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया, और चैतन्य महाप्रभु ने आगे बढ़कर उनको गले से लगा। सनातन गोस्वामी ने बोला कि आप प्लीज मुझे गले मत लगाइए, आप आलिंगन बंद कीजिए प्लीज, आप दूषित हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं आपका आलिंगन आप पर कृपा करने के लिए नहीं कर रहा, मैं आपका आलिंगन अपनी प्योरिफिकेशन के लिए, अपनी शुद्धिकरण के लिए कर रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला तपन मिश्रा और चंद्रशेखर आचार्य को कि इनका सारे बाल, सिर के बाल, दाढ़ी के बाल सब मुंडन करो, साफ करो, और इनको वैष्णव वस्त्र प्रदान करो। तो उन्होंने उनको नए नए कपड़े दिए, उन्होंने कहा कोई फटी पुराने धोती है तो प्लीज वो दे दो। तो वो धोती ली, उसी को फाड़ के उन्होंने कुमीन बनाया और काम चलना शुरू किया। कंधे पर उन्होंने श्रीकांत ने जो कंबल दिया था वो टांगा हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार ऐसे कंबल की ओर देखा, फिर अपने काम में लगते चैतन्य महाप्रभु। लेकिन सनातन गोस्वामी को पता चल गया कि चैतन्य महाप्रभु इस कंबल से खुश नहीं। सनातन गोस्वामी तुरंत गंगा घाट गए और वहां पर एक भिखारी अपना पुराना फटा हुआ कंबल धो रहा था। तो सनातन गोस्वामी ने बोला क्या तुम मुझ पर एक कृपा करोगे, क्या करना है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अपना कंबल मुझे दे दो और मेरा कंबल तुम ले दो। तो भिखारी ने कहा मैं गरीब हूं तो मेरा मजाक उड़ाते हो? सनातन गोस्वामी ने बोला नहीं नहीं मैं सीरियस हूं, आप प्लीज ये ले लो और मुझे अपना फटा कंबल दे दो। तो वो कंबल एक्सचेंज करके वापस जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए, चैतन्य महाप्रभु ने बोले हाँ अब ठीक है, अब तुम प्रॉपर वैष्णव लग रहे हो, है ना। एक तरफ तुमने वैराग्य की निशानी पहनी हुई थी, ऊपर से कंबल लिया हुआ था, तो बात बन नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कोई ढोंगी व्यक्ति खड़ा है, अब सब ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा दी वहां पर, और चैतन्य महाप्रभु ने जो उनको सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी वो चैतन्य चरितामृत में लिपिबद्ध है, और श्रील प्रभुपाद ने एक अलग से ग्रंथ भी लिखा चैतन्य महाप्रभु ने, उसका नाम है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा। उसमें पूरा उन्होंने वर्णन किया है कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या शिक्षाएं दी। चैतन्य महाप्रभु ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ 8 श्लोक बोले थे, सिर्फ 8 श्लोक, जिसको हम शिक्षाष्टकम के नाम से जानते हैं। और लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के माध्यम से रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीवा गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने पूरी भक्ति की प्रक्रिया, भक्ति का फल, भक्ति की महिमा, उसका बखान किया। सो चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा दी, चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया कि एक व्यक्ति था बहुत गरीब, बहुत ही गरीब व्यक्ति था, खाने के लाले थे उसको, और एक बार एक ज्योतिषी से मिला, उसका नाम था सर्वज्ञ। तो वो ज्योतिषी ने उसको बुलाया, तुम बेकार में तकलीफ में झेल रहे हो, तुम्हारे पिता तो बहुत अमीर व्यक्ति हैं और उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत ढेर सारा खजाना गाड़ के रखा था, तुम उस खजाने की तलाश ही नहीं कर रहे। तो उसने बोला बताओ बताओ कहाँ है वो खजाना। उस गरीब व्यक्ति ने बोला, तो सर्वज्ञ ने बोला कि देखो 4 दिशाएं हैं, अगर तुम दक्षिण दिशा में खोदोगे उस खजाने की तलाश करोगे तो तुम्हें बहुत सारी मक्खियां मच्छर काटेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे। अगर तुम पश्चिमी दिशा में जाकर खुदाई करोगे तो वहां पर एक भूत है, वो भूत तुम्हें परेशान करेंगे। और अगर तुम उत्तरी दिशा में जाकर खुदाई करनी शुरू कर दी तुमने तो वहां पे एक बहुत बड़ा काले रंग का सांप है, वो तुम्हें निगल जाएगा। तो क्या करूं, तुम पूर्वी दिशा में खुदाई करो, पूर्वी दिशा में खजाने की खोज करो, तुम सर्वसंपन्न हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक्सप्लेन किया कि जो दक्षिण दिशा में खुदाई है, जो दक्षिण दिशा में खुदाई करने का मतलब है कर्म कांड का अनुशीलन, कर्म कांड का मतलब है अनेक इच्छाएं हैं और अनेक इच्छाओं के पालन में, उसकी पूर्ति में व्यक्ति लगा रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ये जो इच्छाएं हैं ये मच्छर मक्खियों की तरह है, जो निरंतर हमें काटती रहेंगी, चैन की सांस नहीं लेने देंगी। और चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जो पश्चिमी दिशा में जो घोस्ट है वो ज्ञान कांड है, अपने मन में तरह तरह की कल्पनाएं करना, जब भूत पकड़ लेता है तो व्यक्ति अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है, मन में अजीब अजीब से विचार आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये जो विचार है ये ज्ञान कांड जो है ये भूत चिपकने के समान है, ये हमेशा हमारे दिमाग को परेशान करता है। और जो उत्तरी दिशा है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा उत्तरी दिशा जो है ये जो काला सांप है ये मोक्ष है, कैवल्य है। ये कैवल्य का मतलब है अपने अस्तित्व को नष्ट कर देना, आत्महत्या कर देना। तो अगर हम कैवल्य की तलाश में जाएंगे, अगर हम ब्रह्म ज्योति में लीन होने की बात करेंगे तो उसी प्रकार है जैसे सांप निकल जाए। तो इन तीनों से बच के रहना, अगर तुम इन तीनों से बच के रहोगे और पूर्वी दिशा में खजाने की खोज करोगे मतलब भक्ति करोगे तो तुम्हें भगवान कृष्ण की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, तुम्हें भक्ति रूप धन मिल जाएगा, तो तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया कि देखो, उन्होंने भगवान के अवतारों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से भगवान के तीन जो है विस्तार है, भगवान को तीन रूपों में समझ सकते हैं, स्वयं रूपा, तद एकात्म रूपा और आवेश। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जो स्वयं रूप है उसमें स्वयं रूप है और वैभव प्रकाश है। जो वैभव प्रकाश में कौन है? बलराम जी। बलराम जी वैभव प्रकाश है। कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ रूप का फर्क है। और उन्होंने बताया कि तद एकात्म रूप जो है उसमें दो भाग है, स्वांश और विलास। और उन्होंने बताया कि स्वांश जो रूप है वो क्या है? कारण दक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। इसी तरह से विलास के आगे कई वर्ग हैं। और उन्होंने हरेक वर्ग को एक्सप्लेन किया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से किस किस अवतार कौन कौन सी श्रेणी में आता है और उनके क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है। ये पूरा विस्तार से चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया। और उन्होंने बताया आवेश का मतलब है कि भगवान कोई जीव जो है भगवान कृष्ण की किसी विशिष्ट शक्ति से आवेश है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि जो भक्त हैं वो चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण की विशिष्ट शक्ति से आवेश है। श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चैतन्य का श्लोक कोट किया, तार शक्ति बिना ना है तार प्रवर्तन, कि भगवान की शक्ति से आवेशित हुए बिना भक्ति का प्रचार नहीं किया जा सकता। जो भी भक्त कृष्ण भक्ति के प्रचार में संलग्न है वो हम ये समझ जाना चाहिए कि वो लोग भगवान कृष्ण द्वारा शक्ति से आवेशित। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया शिव जी के बारे में और उन्होंने बताया देखो भगवान कृष्ण दूध हैं तो शिव जी दही हैं। दोनों में फर्क है भी और फर्क नहीं भी है, लेकिन ये बात निश्चित है कि दही का स्रोत दूध है। और चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि 5,04,000 मनु हैं और हरेक मनु ब्रह्मा जी के जो हैं वो एक दिन में 71 जो युग हैं 71 युग तक चैतन्य जो एक मनु का जीवन काल रहता है। और उन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण जो हैं वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार अवतरित होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भगवान हर युग में भगवान प्रकट होते हैं, मृडयन्ति युगे। सतयुग में भगवान का क्या रूप है, त्रेता युग में भगवान का क्या स्वरूप है, द्वापर युग में भगवान का क्या स्वरूप है, कलयुग में भगवान कैसे अवतरित होते हैं, कैसे पहचानेंगे। तो सनातन गोस्वामी ने पूछा आप प्लीज मुझे बताएं कि कलयुग में हम भगवान को कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। तो उस समय भागवतम का वो श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने कोट किया, भागवतम के 11वें स्कंध के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक क्या है? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राये जन्ति ही सुमेश। तो उन्होंने बोला कृष्ण वर्णम, कलयुग में जो भगवान आएंगे तो वो क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे, कृष्ण वर्णम, कि वो हमेशा कृष्ण का वर्णन करेंगे, हमेशा कृष्ण का वर्णन करेंगे। और हमारे आचार्य बताते हैं कि कृष्ण वर्णन का मतलब यह है कि उनके नाम में कृष्ण शब्द भी होगा, है ना, तो चैतन्य महाप्रभु का नाम क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य। तो कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्ण, त्विषा मतलब चमड़ी, अकृष्णम, अकृष्ण मतलब काली नहीं होगी, काली नहीं होगी का मतलब गौर वर्ण होगा। सांगो पांगास्त पार्षदम, और उनके साथ बहुत सारे उनके पार्षद हैं। क्या चैतन्य महाप्रभु के साथ पार्षद हैं? चैतन्य महाप्रभु के साथ असंख्य पार्षद हैं। और क्या करेंगे वो? यज्ञ संकीर्तन, और वो संकीर्तन यज्ञ आरंभ करेंगे। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो भगवान के इस अवतार के, भगवान के इस रूप की उपासना करेगा। ये जल्दी ही सुमेधशा, सुमेधशा जो बहुत इंटेलिजेंट होती है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा इस तरह के व्यक्ति को तो मैं जानता हूं, ये तो आप ही हो। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़े एम्बेरस हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो मेरे से चलाके मत करो, मुझे आप अपने वाक जाल में फंसाने की कोशिश मत करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया सनातन गोस्वामी को कि भगवान कृष्ण जब अवतरित होते हैं तो उनकी लीलाओं को हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। कुमार लीला जब छोटे शिशु अवस्था है, हाँ, फिर प्रौगंड लीला कि जब थोड़े से बड़े हो गए, हाँ, 5-7 साल के हो गए, अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं, फिर कौमार लीला जब 13-14 साल के हो गए, और यौवन लीला जब पूरी तरह से भगवान कृष्ण अपना पूर्ण यौवन प्रदर्शित करते हैं 16 साल के हो जाते हैं। 16 साल से भगवान कृष्ण आगे नहीं बढ़ते। पुरुष पुराना नवयोग, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान आदि पुरुष हैं, सबसे पुरातन है भगवान कृष्ण, लेकिन नवयोग नमचा, भगवान कभी भी बूढ़े नहीं होते। और श्रील प्रभुपाद ने बताया, श्रील प्रभुपाद ने कई बार इस बात का उदाहरण दिया कि आपने कभी ऐसा चित्र देखा जिसमें भगवान कृष्ण बूढ़े हों, लटके हों? उन्होंने बोला जब आप भगवद गीता में जो भगवान कृष्ण की फोटो देखो, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था उस समय भगवान कृष्ण 125 वर्ष के थे, लेकिन क्या लग रहे हैं 125 वर्ष के? भगवान 16 साल के लग रहे हैं। नव योग, सो सनातन गोस्वामी वृंदावन में रह रहे थे, और एक बार चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए सनातन गोस्वामी पुरी की ओर चले। रास्ते में झारखंड के जंगलों में से जा रहे थे, और उनको हाइजीनिक फूड नहीं मिला खाने के लिए, गंदा पानी था, जो भी पिया तो उनके सारे शरीर में फोड़े हो गए। सनातन गोस्वामी उससे बवाद भर गया, बस निकलने शुरू हो गई, खून बहना शुरू हो गया। वैसी अवस्था में वो पुरी पहुंचे। जब पुरी पहुंचे तो वहां पर सिद्ध बकुल में हरिदास ठाकुर के पास रहना शुरू किया। चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने गए, हरिदास ठाकुर से रोज चैतन्य महाप्रभु मिलने जाया करते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु मिलने गए हरिदास ठाकुर से, हरिदास ठाकुर ने कहा आपका सनातन गोस्वामी भी यहाँ पर आया। चैतन्य महाप्रभु ने देखा सनातन गोस्वामी को, दौड़ के गले से, तो सारे उनके जो शरीर के पस और खून था वो चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर। सनातन गोस्वामी को बहुत दुख हुआ, उन्होंने कहा कि मैं भगवान की सेवा के लिए आया हूं यहां पर, लेकिन उल्टा काम हो रहा है, मेरे कारण भगवान का शरीर दूषित हो। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को यमल बगीचे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया, तो सिद्ध बकुल से यमल जो यामल बगीचा है वहां जाने के दो रास्ते हैं, एक नरसिंह द्वार से है और एक समुद्र तट से होकर है। मई जून का महीना था, पूरी एकदम तपती गर्मी, और सनातन गोस्वामी समुद्र के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से गए, बिल्कुल एकदम रेत जल रही थी। सनातन गोस्वामी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, और सनातन गोस्वामी वहां पर गए और सनातन गोस्वामी जब पहुंचे चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ले चुके थे, तो उन्होंने गोविंद को बोला कि इसको प्रसाद दो। सनातन गोस्वामी ने प्रसाद ग्रहण किया और चैतन्य महाप्रभु के समक्ष प्रस्तुत हुए। चैतन्य महाप्रभु का ध्यान उनके पैरों की ओर गया, उन्होंने बोला तुम्हारे पैरों में इतने छाले कैसे पड़ गए? तो उन्होंने बोला कि वो रेत गर्म थी इसलिए मेरे पैरों में छाले पड़ गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम नरसिंह द्वार से क्यों नहीं आए, वहां तो ठंडक होती है। सनातन गोस्वामी ने कहा मैं तो मलेच हूं, अगर मैं नरसिंह द्वार से आता वहां पर जगन्नाथ जी के सेवक आते जाते रहते हैं, अगर मेरी छाया भी उन पर पड़ जाती तो वो दूषित हो जाते हैं और भगवान की सेवा में विघ्न आ जाता। तो भगवान की सेवा में विघ्न नहीं आए करके मैं नरसिंह द्वार से नहीं आया। तो चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रसन्न, चैतन्य महाप्रभु ने चार भक्तों के द्वारा चार अलग अलग गुण प्रदर्शित किए। रामानंद राय के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने इंद्रियों पर कंट्रोल दिखाया कि इंद्रियों पर कंट्रोल क्या होता है। रामानंद राय जब जगन्नाथ जी की सेवा के लिए उनकी प्रसन्नता के लिए देवदासियों को तैयार करते थे, अपने हाथ से नहलाते थे देवदासियों को, तेल की मालिश करते थे, उनके मन में कुछ भी विकार नहीं आता। तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के माध्यम से दिखाया कि इंद्रियों पर वश, इंद्रियों पर नियंत्रण क्या होता है, उसकी पराकाष्ठा क्या है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर पंडित के माध्यम से ये दिखाया कि उदासीनता क्या होती है, किसी व्यक्ति की परवाह नहीं करना, अगर कोई वैष्णव सदाचार का उल्लंघन कर रहा है तो उसको सुधार दे। रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने वैराग्य की पराकाष्ठा दी कि वैराग्य क्या होता है, और सनातन गोस्वामी के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने सहनशीलता का प्रदर्शन किया कि सहनशीलता की पराकाष्ठा क्या है, अपने बारे में कुछ भी विचार नहीं करना, हमेशा ये सोचना कि भगवान की सेवा किस प्रकार की जाए और भगवान की सेवा में जितनी भी मुश्किलें परेशानियां आ रही हैं उसको हंसी खुशी सहन। खैर चैतन्य महाप्रभु रोज मिल रहे थे सनातन गोस्वामी से सिद्ध बकुल में और रोज उनको गले से मिलाते थे। सनातन गोस्वामी दूर भागते थे चैतन्य महाप्रभु को देखकर, हम लोग आगे भागते हैं, सनातन गोस्वामी दूर भाग रहे थे और चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे थे, उनके पीछे भागकर उनको पकड़ के जबरदस्ती उनका आलिंगन करते थे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा मैं अब ये ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता कि भगवान मेरा आलिंगन कर रहे हैं। अद्भुत बात है। तो उन्होंने जगदानंद पंडित से डिस्कशन किया, जगदानंद पंडित जो है सत्यभामा है। तो जगदानंद पंडित से उन्होंने बोला कि मैं बहुत ही दुविधा में फंस गया, मुझे चैतन्य महाप्रभु की सेवा करनी चाहिए लेकिन उससे विपरीत काम कर रहा है, तो आप प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूं, मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मैं जगन्नाथ जी के रथ के नीचे आके अपने प्राण छोड़ दूं या मैं जगन्नाथपुरी को छोड़ के चले जाओ। जगदानंद ने बोला कि आप वापस वृंदावन चले जाओ, यहाँ पर तो सनातन गोस्वामी ने अगले दिन मिले चैतन्य महाप्रभु से, तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज मुझे आज्ञा दीजिए मैं वापस वृंदावन जाना चाहता हूँ। और मैंने जगदानंद पंडित से भी डिस्कस किया है, उनका भी यही विचार। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये जग्गे की हिम्मत कैसे हो गई तुम्हें सलाह देने की, आप इतने क्वालिफाइड हो कि आप जगदानंद पंडित के गुरु बनने के योग्य हो, ये जगदानंद का दिमाग खराब हो गया इसने आपको सलाह दे दी। तो सनातन गोस्वामी बहुत दुखी हो गए। सनातन गोस्वामी इसलिए दुखी हो गए कि चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी ने बोला कि जगदानंद पंडित का कितना सौभाग्य है, आप उसको अपना अंतरंग पार्षद मानते हो इसलिए तो आप उसके बारे में उसको डांट रहे हो, लेकिन मुझे आप अपना अंतरंग पार्षद नहीं मानते, मुझे आप मेरी वंचना कर रहे हो, मेरे साथ आप छल कर रहे हो, मेरी प्रशंसा करके मुझे ग्लोरीफाई करके। कितना भाग्य है जगदानंद पंडित का, उल्टा चल रहा है। लोग सोचते हैं कि जब गुरु प्रशंसा करेंगे बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात तब होगी जब गुरु आपको डांटेंगे, क्योंकि गुरु प्रशंसा हरेक की करते हैं लेकिन हरेक को डांटते नहीं है, डांटते सिर्फ उसी को है जिस पर उनको पूरा भरोसा होता है कि भाग नहीं जाएगा। लेकिन हमें सामने से ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि गुरु हमें डांटते थे, है ना। गुरु की हमें पूरी निष्ठा से सेवा में संलग्न होना चाहिए, और अगर पूरी एफर्ट लगाने के बाद भी अगर गुरु हमें कमी निकाल रहे हैं, हमें डांट रहे हैं, तो हमें खुश होना चाहिए कि गुरु ने हमें इस लायक समझा, गुरु हमें भक्ति में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं। मैं तुम्हें अपने बच्चे के समान समझता हूं। जिस प्रकार एक मां एक छोटे अपने नवजात शिशु को अपनी गोदी में बिठाती है और वो बच्चा अपनी मां की गोदी में मल मूत्र त्यागता है, तो क्या मां को घृणा आती है? माँ को बहुत सुख का अनुभव होता है। इसी प्रकार जब मैं तुम्हें आलिंगन करता हूँ और तुम्हारे जो शरीर की मवार बस मेरे शरीर पर लगती है, तो मुझे उससे अगुरु की खुशबू आती है। और दूसरी बात यह है कि मैं तुम्हें इसलिए गले से लगाता हूँ भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। भगवान कृष्ण ने तुम्हें भेजा है मेरी परीक्षा लेने के लिए। अगर मेरे मन में तुम्हें गले लगाते समय एक लेश मात्र भी विकार आ गया, तो चैतन्य तो भगवान कृष्ण बोलेंगे कि तुमने मेरे मन से घृणा कर ली, मैं तुम पे कृपा कैसे कर सकता हूं। तो भगवान कृष्ण ने तुम्हें भेजा है मेरी परीक्षा लेने के लिए, मैं तुम्हें अपने गले से लगाता हूं, भगवान के द्वारा दी गई परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, सफल होने के लिए। ऐसा कहकर चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को गले से लगाया, और जैसे गले से लगाया सनातन गोस्वामी का सारा शरीर निरोगी हो गया, एकदम सोने के समान तप्त कांचन, सोने के समान सनातन गोस्वामी का शरीर चमकना शुरू। चैतन्य महाप्रभु की, सनातन गोस्वामी की। सो अभी हम समझो कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ 15-20% ही बता पाया हूँ, अभी समय है तो थोड़ा और मैं आपको बताऊंगी। 8:40 क्या टाइम हो गया, और 10-15 मिनट का समय दूंगा आपका। तो सनातन गोस्वामी वापस गए वृंदावन, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि आप प्लीज वैष्णव सदाचार क्या होता है अपने आचरण के द्वारा दिखाओ, जो भगवान कृष्ण की लुप्त लीला स्थितियां हैं उसको खोजो और उस पर जीर्णोद्धार करो, आप वैष्णव ग्रंथ लिखो और लोगों को शुद्ध भक्ति के बारे में बताओ। तो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से विदा लेकर वापिस वृंदावन, और वृंदावन में आकर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन शुरू कर दिया। सनातन गोस्वामी को भगवत कृपा से मदन मोहन जी के विग्रह मिले। भक्ति की हमारे आचार्य बताते हैं कि भक्ति करने की तीन स्थितियां हैं, और उन तीन स्थिति को क्या बोलते हैं, भगवान से संबंध स्थापित करना, हाँ, और भगवान से भगवान की सेवा करना, मतलब एक तो संबंध है, एक अभिधेय है और एक प्रयोजन है। संबंध का मतलब है भगवान से संबंध स्थापित करना, मतलब मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, इसको बोलते हैं संबंध तत्व। अभिधेय तत्व है कि जब संबंध स्थापित हो गया, संबंध के बारे में पता चल गया, तो उस संबंध का क्या कर्तव्य है, उस संबंध का कर्तव्य है जब पता चल गया कि भगवान मेरे पिता है, तो पुत्र को पिता की सेवा में संलग्न होना चाहिए, उसको अभिधेय बोलते हैं। और उस सेवा के माध्यम से, अभिधेय की प्रक्रिया के माध्यम से हमें सिद्धि प्राप्त होगी, हमें उद्देश्य जो लक्ष्य है हमारे जीवन का वो प्राप्त होगा, उसको बोलते हैं प्रयोजन। तो जो संबंध तत्व के जो विग्रह है वो मदन मोहन है, और अभिधेय के विग्रह हैं श्री राधा गोपदेव, और प्रयोजन जो तत्व है उसके विग्रह हैं श्री राधा गोपीनाथ। इसी प्रकार से इन तीनों जो विग्रह हैं, ये जो तीनों तत्व हैं, इनके आचार्य हैं, संबंध तत्व के आचार्य हैं श्रीला सनातन गोस्वामी, अभिधेय तत्व के आचार्य हैं रूपा गोस्वामी, और प्रयोजन तत्व के आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी जो हैं वो मदन मोहन जी के विग्रह की सेवा करते हैं, और द्वादश आदित्य टीले पर जो है रहते थे, उनकी वहां पर सेवा कर रहे थे। कुछ ज्यादा उनको भोग लगाने के लिए नहीं था, सूखी रोटी तो थोड़ा सा नमक लगा कर देते थे दे। तो काफी टाइम तक भगवान खाते रहे उसको, लेकिन एक दिन भगवान से रहा नहीं गया, उन्होंने बोला भाई नहीं खाएगा, नहीं ये सूखी रोटी पे नमक रखे दे देते दे हो, कुछ और खिलाओ भाई। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि मेरे पास तो यही है, वो आटे में यमुना जी का पानी डालकर गोले बनाते थे, उसको पका के नमक रखते थे। तो बोला मेरे पास यही है, और देखो इससे ज्यादा की उम्मीद मत करो, अगर मैं कुछ और दूंगा कल को तुम कुछ और मांगना शुरू कर दोगे, वो दूंगा कुछ और मांगना शुरू कर दोगे, इसी से संतुष्ट रहो, अगर संतुष्ट नहीं हो पा रहे तो अपना इंतजाम खुद करो। उसी दौरान उन्हीं दिनों में एक मुल्तान का व्यापारी था, उसका नाम था कृष्णदास कपूर, वहां से आगरा जा रहा था सामान बेचने के लिए। द्वादश आदित्य टीले के पास उसका जो जहाज था रेत में फंस गया, बहुत कोशिश की नहीं निकला। सब लोगों ने बोला कि यहाँ पर एक सिद्ध महात्मा रहते हैं, उनसे जाके रिक्वेस्ट करो, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो गए सनातन गोस्वामी के पास, बोला प्लीज मेरी हेल्प करो। सनातन गोस्वामी ने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मदन मोहन जी को बोलो ये अगर कुछ कर देते। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज मेरे सामान को बचाइए, मेरे जहाज को निकालिए, मैं आपकी सेवा यथासंभव करूंगा। ये बोलना था कि यमुना जी में उफान आ गया, और जब उफान आया तो जहाज ऊपर उठ गया, रेत के टीले से बाहर निकल गया। वो गया अपना सामान बेच के आया, वापसी में वो जो कपूर जी थे उन्होंने मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया, तो मदन मोहन जी की सेवा शुरू। जगदानंद पंडित पुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ रह रहे थे, और जैसे सत्यभामा भगवान कृष्ण से लड़ती रहती थी, ऐसे जगदानंद पंडित भी चैतन्य महाप्रभु से लड़ते रहते थे किसी किसी चक्कर में। तो एक बार उनसे अनबन हो गई जगदानंद पंडित की चैतन्य महाप्रभु से, तो उन्होंने बोला कि मैं वृंदावन जाऊंगा, मुझे वृंदावन जाना है, यहाँ नहीं रहना। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला ठीक है आप चले जाओ, लेकिन चार बातों का ध्यान रखना, वहां पर ज्यादा देर मत रहना, क्योंकि अगर धाम में ज्यादा देर तक रुको तो धाम ऑर्डिनरी साधारण लगना शुरू हो जाता है, हमें लगना शुरू हो जाएगा कि हम यहाँ भी तो यही काम कर रहे हैं, वहां भी यही काम कर रहे हैं, क्या फर्क है, एक जैसे लोग हैं, एक जैसी चीज है। तो उन्होंने बोला ज्यादा देर मत रहना, और दूसरी उन्होंने शिक्षा दी कि वहां पर अकेले मत रहना, किसी सीनियर वैष्णव के संरक्षण में रहना। हमें भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम वृंदावन अकेले नहीं जाना चाहिए, हमें ऐसा नहीं उठाए चल रही है, गाड़ी है, रास्ता पता है, चलो वृंदावन, हमें वृंदावन जाना चाहिए किसी सीनियर वैष्णव के संरक्षण में, या फिर कोई सेवा तो जा सकते है ना, दर्शन के लिए जा रहे थे, कोई सेवा है तो जाओ, नहीं तो किसी सीनियर वैष्णव के संरक्षण में जाओ, सुरक्षित रहोगे, धाम अपराध से बचो। तो उन्होंने बोला कि ज्यादा देर मत रहना और किसी सीनियर वैष्णव के संरक्षण में रहना। और तीसरी बात उन्होंने बोली कि ब्रजवासियों से ज्यादा मेलजोल मत करना, कभी तुम्हें लगे कि साधारण व्यक्ति है कुछ अपराध कर बैठे, ज्यादा मेलजोल मत बढ़ाना उनसे। और चौथी बात उन्होंने बोली फटाफट वापस आ जाना। तो जगदानंद पंडित गए और वहां जाकर वो सनातन गोस्वामी के पास आए, और सनातन गोस्वामी ने जब जगदानंद पंडित वापस जा रहे थे पूरी, तो उनको चार वस्तुएं उनको उन्होंने दी चैतन्य महाप्रभु को भेंट देने के लिए। क्या चार वस्तुएं दी उन्होंने? एक तो ब्रज की रज दी, जहां पर भगवान कृष्ण ने रास किया था वहां की जो रज है उन्होंने वो दी जगदानंद पंडित को चैतन्य महाप्रभु को देने के लिए। एक उन्होंने गोवर्धन शिला दी, एक उन्होंने गुंजा माला दी, और एक वृंदावन में एक फल मिलता है पीलू, उसके जो बीज हैं वो बीज दिए चैतन्य महाप्रभु को देने के लिए। तो जगदानंद पंडित ने जब पूरी गए तो उन्होंने ये जो वस्तुएं हैं चैतन्य महाप्रभु को प्रदान की। सो सनातन गोस्वामी गोवर्धन में रह रहे थे पवन सरोवर के पास, वहां पे चकलेश्वर महादेव जो है उनके मंदिर है, वहां पर जो चकलेश्वर महादेव है वो मंदिर की स्थापना भगवान कृष्ण के पोते बजरंगनाथ ने की। तो वहां के जो लोकपाल हैं वो चकलेश्वर महादेव। तो सनातन गोस्वामी वहां रह रहे थे, लेकिन वहां पे मच्छर मक्खियां बहुत परेशान कर रहे थे। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि मेरी सेवा में बाधा आ रही है, मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाता हूँ। तो उन्होंने ऐसा सोचा तो शिव जी उनका विरह बर्दाश्त नहीं कर पाए, एक ब्राह्मण का रूप बना कर आए और उनको बोला आप प्लीज एक दिन और रुक जाओ, आप एक दिन और रुक जाओ, अगर ये मच्छर मक्खियां आपको परेशान करेंगे तो फिर चाहे आप चले जाना। तो सनातन गोस्वामी ने बोला फाइन एक दिन रुक जाता हूँ। और शिव जी वापस गए और उन्होंने बुलाया जो मच्छर मक्खियों का जो राजा था, उन्होंने बोला भैया कुछ भी कर लेना, सनातन गोस्वामी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और उस दिन से सनातन गोस्वामी को कभी मच्छर मक्खी ने परेशान नहीं किया। गोवर्धन में सनातन गोस्वामी बहुत लीलाएं हैं, बहुत लीलाएं। एक बार सनातन गोस्वामी गोवर्धन में राधा कुंड में गए, वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी रह रहे थे, है ना। तो गए और रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में बैठ के जप कर रहे थे, और वहीं पर एक शेर आ गया पानी पीने के लिए। तो सनातन गोस्वामी दूर से देख रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जप में लगे हुए हैं, और वहां पर उनके पास में शेर खड़ा हुआ, और रघुनाथ दास गोस्वामी की इस और भगवान कृष्ण खड़े छड़ी लेकर। कि अगर शेर ने हमला कर दिया रघुनाथ दास गोस्वामी पे तो उनकी रक्षा करें। तो सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला कि देखो हमारा काम भगवान की सेवा करना है, भगवान से सेवा लेना नहीं है। आप इस तरह से जो है अगर आप ऐसे करोगे तो भगवान कृष्ण आपकी सेवा के लिए उनको खुद खड़ा होना पड़ रहा है, ऐसे नहीं, थोड़ी सी सावधानी बरतो। एक बार मई जून का महीना था, रघुनाथ दास गोस्वामी जप कर रहे थे कड़ी धूप में बैठकर, कुछ उनको सरोकार नहीं क्या हो रहा है क्या। सनातन गोस्वामी उनसे मिलने गए तो उन्होंने देखा श्रीमती राधा रानी अपने आंचल से उनको छाया कर रही। तो सनातन गोस्वामी ने उनको बोला कि आप प्लीज ऐसा मत करो, एक भजन कुटीर बनाओ ताकि आप श्री श्री राधा कृष्ण से सेवा नहीं हो। एक बार रूपा गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने श्रीमती राधा रानी और उनकी जो सखियां हैं उनकी जो चोटी है उसकी तुलना उन्होंने सांप से की। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि ये बात जमने की है ना, आपने उनकी जो चोटी की तुलना सांप से कर दी, ये बात अच्छी नहीं लग रही, जमने नहीं, उचित नहीं। तो रूपा गोस्वामी ने कहा मैं शर्मिंदा हूं, आपको अच्छी नहीं लगी, मुझे दुख है। ये कहकर सनातन गोस्वामी वापस गोवर्धन आ गए और वहां पे वो स्नान कर रहे थे तो कुछ दूर पर कुछ पांच सात जो बच्चियां हैं छोटी छोटी बच्चियां वो झूला झूल रही थी, और वो झूला झूल रही थी तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि उनकी जो गले पे सांप रेंग रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी बोले लाली तुम्हारे गले पे सांप रेंग रहे हैं, बचाओ अपने आप। तो भाग कर गए सनातन गोस्वामी, पास जाके देखा तो सांप नहीं था वो चोटियां थी। तो सनातन गोस्वामी एकदम से समझ गए जो रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि उनकी जो चोटियां सांप के समान है उसमें कुछ भी अनुचित या अतिशयोक्ति नहीं है। एक बार रूपा गोस्वामी को के मन में इच्छा हुई कि मैं अपने भाई को सनातन गोस्वामी को मैं कुछ फीस्ट बना के खिलाऊं, लेकिन उनके पास कुछ भी ना धन था ना सामान था। तभी एक बहुत सुंदर कन्या आई, उन्होंने बोला कि हमारे घर में कोई फंक्शन है, तो मेरी मम्मी ने बोला जाके आपको ये सामान। तो रघुनाथ तो रूपा गोस्वामी ने वो सामान एक्सेप्ट कर लिया और उसकी फीस बनाई और उन्होंने सनातन गोस्वामी को इनवाइट किया फीस लेने के लिए। तो सनातन गोस्वामी जब प्रसाद ले रहे थे बोल रहे थे यार कुछ ज्यादा ही टेस्टी है, कहाँ से लेके आए ये सामान। तो उन्होंने बोला मेरे पास तो था नहीं, मैंने इच्छा की तो ऐसे ही एक कन्या आई, उन्होंने वो कन्या को एक्सप्लेन किया। सनातन गोस्वामी ने कहा वो तो श्रीमती राधा रानी थी, सामान देने के लिए आया, आपने श्रीमती राधा रानी से सेवा स्वीकार कर ली। तो बहुत दुख हुआ उनको श्रीमती राधा रानी से सेवा स्वीकार करने के लिए, लेकिन उन्होंने प्रसाद छोड़ा नहीं, प्रसाद उन्होंने रो भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे, दुखी हो रहे थे कि श्रीमती राधा रानी से सेवा स्वीकार की और खुश हो रहे थे कि श्रीमती राधा रानी द्वारा प्रदत्त उनके द्वारा दिया गया प्रसाद उनको ग्रहण करने के लिए मिला। सनातन गोस्वामी रोज गोवर्धन की परिक्रमा लगाते थे, वृद्ध हो गए तो लोगों ने बोला कि आप अब परिक्रमा मत लगाइए, आप अब वृद्ध हो गए हैं अब आपसे परिक्रमा नहीं लग रही। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि मैंने कृष्ण को वचन दिया है कि मैं परिक्रमा लगाऊंगा, अब ये वचन कौन पलट सकता है, स्वयं कृष्ण ही ये वचन पलट सकते हैं, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं अपने वचन से फिर जाऊं। तो जब भगवान कृष्ण ने ये सुना तो बहुत पुलकित हो गए और एकदम दौड़ के गोवर्धन पर्वत पर चढ़ गए और वहां पे डांस करने लगे भगवान कृष्ण, और उनकी भावावेश से गोवर्धन की एक शिला पिघल गई और उसमें चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह अंकित हो गया। भगवान कृष्ण उस शिला को लेके आए और उन्होंने सनातन गोस्वामी को स्वयं वो शिला प्रदान की और उन्होंने बोला तुम अगर इसकी प्रदक्षिणा करोगे तो गोवर्धन की परिक्रमा करने के ही समान, और जो शिला है आप आज उसके दर्शन कर सकते हो, वो राधा दामोदर मंदिर में अभी भी प्रकट है, मौजूद है, आप उसको दर्शन कर सकते हो। तो ये कुछ मैं आपको बातें बता पाया, बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत सारी शिक्षाएं हम ले सकते हैं सनातन गोस्वामी, रूपा गोस्वामी और हमारे अन्य आचार्यों के जीवन से, और हम इन आचार्यों के बारे में सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से। अगर श्रील प्रभुपाद हम पर कृपा नहीं करते तो हम कभी भी सनातन गोस्वामी रूपा गोस्वामी के बारे में नहीं जान पाते, उनकी महिमा के बारे में नहीं जान पाते, चैतन्य महाप्रभु की महिमा के बारे में हम नहीं जान पाते। हम सब लोग भगवान कृष्ण को तो जानते हैं, बचपन से हमने भगवान कृष्ण को देखा और सुना है, लेकिन भगवान कृष्ण की वास्तविक महिमा क्या है, भगवान कृष्ण की सेवा करने का सही तरीका क्या है, वो अगर शिला प्रभुपाद होते हैं तो हम कभी भी इस बात को नहीं समझ पाते, नहीं समझ सकते। इसलिए हमें हमेशा सदैव शिला प्रभुपाद का कृतज्ञ रहना चाहिए, हमेशा अपने मन में उनको सदैव धन्यवाद देते रहना चाहिए कि उन्होंने हमारे सभी दोषों को अनदेखा करके एक छोटी सी भक्ति रूपी चिंगारी देखी और उसी के द्वारा उन्होंने हमें सेवा का मौका दिया। तो हमें बहुत ही मनोयोग से, बहुत ही श्रद्धा से, तन मन और धन से हमें श्री प्रभुपाद की यथासंभव सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण।